संसार में जितने भी लोग या पशु पक्षी अन्य जीव जंतु जो भी जीवन जीते हैं, किसी से भी मिलकर देखो, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की सामर्थ्य रखता है, सबके मन में एक कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको। कि अंदर से मनुष्य संतुष्ट नहीं है, और उसकी असंतुष्टि का कारण बहुत से हो सकते हैं। कोई जितना पढ़ना चाहता उतना पढ़ने को नहीं मिला उसको, इसलिए संतुष्ट है। किसी को पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले, इसलिए असंतुष्ट है। किसी को घर रहने को ठीक नहीं मिल रहा है, इसलिए असंतुष्ट है। किसी को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए असंतुष्ट है। किसी की शादी नहीं हो रही है, इसलिए असंतुष्ट है। किसी की शादी हो गई, मनमाफिक पति नहीं मिला या पत्नी नहीं मिली, इसलिए असंतुष्ट है। किसी की संतान खोटी निकल गई, इसलिए असंतुष्ट है। किसी का शरीर रोगी रहता है, इसलिए असंतुष्ट है। किसी की देश की सामाजिक हालत ही खराब है, इसलिए असंतुष्ट है। इतने कारण हैं असंतोष के कि हर मनुष्य किसी ना किसी कारण का शिकार जरूर है। इस करके ही सत्पुरुषों की वाणी का निर्णय है कि नानक दुखिया कुल संसार, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। सहजोबाई कह रही हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो एक एक दुख सबन को, इसका मतलब ये है कि सबके पीछे कोई ना कोई कारण असंतोष का लगा हुआ है, जिसके कारण चैन की जिंदगी व्यतीत करने को उसको नहीं मिले। और देखा देखी व्यक्ति समझता यही है मोटे तौर पर, कि जिसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे के कारण दुखी हूं, तो यही सोच लेता है ये आदमी बड़ा सुखी है, मैं दुखी हूं, मेरे पास भी पैसा हो जाए तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। इसका पूरा विश्लेषण वो नहीं कर पाता। अब सवाल उठता है, ये हर व्यक्ति के जीवन में कमी क्यों खड़ी हुई है? सत्य यह है कि किसी भी काल में कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया, वो चाहे पूरे देश का मालिक बन गया, वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन गया, जहां तक उसकी पहुंच है उसी का राज है, चाहे बड़ा कोई गुणवान बन गया, चाहे बड़ा कोई धनवान बन गया, लेकिन इस असंतोष से कोई नहीं बच सका। इसीलिए सिकंदर जब वापस लौटा सारा ये नॉर्थ जीत कर, हिंदुस्तान भी आया, जब वापस लौटा तब उसने जब मन की हालत देखी तो यही सोचा, सारी जिंदगी तो मैं जीतता रहा लोगों को, लेकिन मुझे मिला क्या? इसलिए अंत में वो कब्र से हाथ बाहर रखकर उसने अपना अंतिम संस्कार करवाया कि लोगों को पता लग जाए कि मैं खाली हाथ संसार से जा रहा हूं। तो इतना बड़ा राजा, जो सफल राजा था, अपने अपने टाइम का सफल राजा था, वो संसार से निराश जा रहा है, एक लेसन है हम सब लोगों के लिए। तो एक तो ये असंतोष को देखने का सांसारिक तरीका है जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है आपको, यदि विचार बुद्धि से देखा जाए तो। ये तो जरूरी है, विचार बुद्धि से ना देखें तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं ही दुखी हूं बाकी सब सुखी हैं। तो दूसरा तरीका क्या है देखने का इसको? दूसरा तरीका है इस प्रकृति के विज्ञान को समझना, अपने विज्ञान को समझना, ईश्वर के विज्ञान को समझना। इसके विज्ञान को जब ये मनुष्य समझता है तब भी इसी निर्णय पर पहुंच जाता है कि इस संसार में ना कभी कोई व्यक्ति सुखी रहा, ना वर्तमान में कोई है, ना भविष्य में कोई हो सकता है। इस संसार में आकर सुखी होना, सुखी का मतलब है संतुष्ट होना, ये संभव ही नहीं है। बेचैनी लेकर पैदा हुए हैं, बेचैनी लेकर जी रहे हैं और बेचैनी लेकर ही संसार से विदा हो जाएंगे। ये हम सबके बारे में फाइनल ट्रुथ है, अंतिम सच्चाई है। तो इसीलिए सत्पुरुष इस पूरे विज्ञान को पेश करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? उसी के लिए कल आपको बताया गया था कि पूरी की पूरी प्रकृति जो है ये तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चाहे वो मनुष्य है या बाहर की प्रकृति है, हर चीज में तीन गुण विद्यमान है, वस्तु में भी और व्यक्ति में भी। जैसे कोई खाने का आइटम होता है, कहते हैं सतोगुणी आहार ग्रहण करो। कौन सा सतोगुणी आहार होता है? फल है, दूध है, जो जल्दी हजम हो जाए, शक्ति ज़्यादा दे, ज़्यादा देर तक उसकी टिकी रहे, और जिसका बुद्धि पर प्रभाव सतोगुणी हो, तो वो सात्विक आहार कहलाता है। तो आहार में भी तीन गुण हैं। तो पूरी प्रकृति में हर वस्तु में तीन गुण हैं। तो सतोगुणी जो व्यक्ति है उसका रुझान ईश्वर की तरफ बढ़ने का होता है। तो ईश्वर की तरफ बढ़ने का मतलब यह है उसने अपने संतोष का सही रास्ता ढूंढ लिया है, अब वो उस ओर चल रहा है जहां जाकर एक दिन वो पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा। दूसरा रजोगुण है, रजोगुण जानते ही हैं कि संसार की इच्छाओं का अधिक फैलाव, इच्छाओं का निरंतर बढ़ते रहना, और उसी अनुपात में उनकी पूर्ति के लिए आपका पुरुषार्थ या कर्म बढ़ते रहना, संपत्ति बढ़ते रहना, संपत्ति के द्वारा वस्तुओं की खरीदारी, वस्तुओं का इकट्ठा करना, ये बढ़ते रहना, ये जो हमारा भौतिक जीवन का फैलाव है इसको रजोगुण कहते हैं। और तमोगुण, फैलाव तमोगुण में भी है लेकिन वो पाप वृत्ति को लेकर है, दूसरे को दुख देकर अपनी इच्छाएं पूरी करना, ये तमोगुणी प्रभाव है। तो जितने भी मनुष्य हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं, और ये तीनों गुण निरंतर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इसलिए देखा होगा कि हर व्यक्ति का हमेशा स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। कोई कोई बड़ा अज्ञानी होता है, बाद में बड़ा बुद्धिमान बन जाता है वो। कोई कोई बड़ा बुरा होता है, बड़ा अच्छा आदमी बन जाता है। कोई कोई व्यक्ति शराबी होता है, बड़ा जो है सात्विक प्रवृत्ति का बन जाता है वो। आहार भी शुद्ध कर लेता है, अपनी बातचीत भी शुद्ध कर लेता है, कर्म भी शुद्ध कर लेता है। तो निरंतर परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव में, प्रकृति में आपको ये देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपके घर में कोई अच्छा व्यक्ति भी है, कल को बुरा हो सकता है, उसकी संगत बिगड़ जाए तो बुरा हो जाएगा। तो जैसे गुणों का संग करेगा, जिन गुणों के लोगों का संग करेगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर आएगा। तो इसीलिए आज कोई चीज मेरे सामने ठीक भी है, कल को वो बिगड़ सकती है या बिगड़ जाती है। तो इसीलिए यहां पर कोई भी चीज निश्चित हमारे लिए नहीं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, ये हर पल बदल रही है, इसका हमको एहसास हो चाहे ना हो। स्वरूप भी बदल रहा है, जिसको हम कहते हैं एजिंग इफेक्ट। वस्तु जितनी पुरानी होती जाती है, अपने आप में वो कमजोर होती चली जाती है, अंदर से ही उसके अंदर चेंज निरंतर होती रहती है। जो वस्तु जैसे ही तैयार हुई, उसका बिगड़ना शुरू हो जाता है अंदर से। तो कहने का मतलब यह है कि हर वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे स्थायी सुख चाहिए, संतोष उसी कहते हैं। ऐसा संतोष जो असंतोष में ना बदले, वही स्थायी संतोष हुआ। तो सत्पुरुष कहते हैं कि इस परिवर्तनशील शरीर में, परिवर्तनशील संसार में मनुष्य कैसे संतुष्ट हो सकता है? वो दिन इसकी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। हम जो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जो भ्रमित हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, कंपेरेटिव हमारी जो है वो विजन है देखने का वस्तुओं को, कि दो से तुलना करता हूं मैं, उसको देखता हूं ये ज्यादा दुखी है, ये इसके पास कम पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं कि हाँ मेरे पास है, लेकिन वो भी तो मुझे दिखाई पड़ता है आगे चलकर कि जो जिसके पास ज्यादा पैसा है मुझसे भी, वो ज्यादा सुखी है, मैं कम सुखी हूं। तो अपने से नीचे के लोगों को देखकर मैं सोचता हूं मैं ज्यादा सुखी हूं, अपने से ऊंचे लोगों को देखकर मैं सोचता हूं मैं कम सुखी हूं। तो इसीलिए आप कुछ भी कर लो, आपके मन की जो ये भावना है या ये जो चंचलता है, ये आपको कभी संतुष्ट रहने देगी ही नहीं। इसलिए सारी की सारी प्रकृति जो है, या सारा का सारा प्रकृति चक्र जो है, ये मनुष्य के असंतोष का कारण है, जिसको हम दुख करके कहते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज है जो सत्पुरुष कहते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य की देह और सारी प्रकृति की रचना जितनी भी हमको दिखाई पड़ती है, ये पांच तत्व से बनी है, जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व से बनी, और इन पांच तत्वों के पांच गुण हैं। जैसे आकाश का गुण है अहंकार, वायु का गुण है लोभ, अग्नि का गुण है क्रोध, जल का गुण है काम, जिसको हम सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, और पृथ्वी का गुण है मोह। तो जिन तत्वों से इस देह की रचना हुई है और जिन तत्वों से अन्य सृष्टि के लोगों की सृष्टि की रचना हुई है, तो उनमें स्वाभाविक रूप से ये पांच विकार विद्यमान है। संसार का लगभग हर मनुष्य अपने आप को देह करके ही जानता है वो, और उसके अंदर यही निश्चय है कि मैं यह शरीर ही हूं, इसके अलावा मेरा अन्य कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी समझ नहीं होती। किसी किसी की बात छोड़ दीजिए, जो शास्त्रों का ज्ञाता है और जिसको कोई पूर्ण गुरु मिला है और जिसने उसकी शरणागति धारण की है, उसके अंदर विवेक आ जाता है, वो इस विज्ञान को गहराई से समझ लेता है, लेकिन आम व्यक्ति अपने आप को शरीर करके ही जानता है। तो जब मैं देह हूं, तो जो देह के गुण हैं वो मेरे गुण हो गए या नहीं हो गए? तो ये जो पांच विकार हैं, ये मेरी संपत्ति हो गई। और वाणी क्या कह रही है इन पांच विकार के बारे में? पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। ये पांच विकार महा दुखदाई हैं और सारा संसार इसमें जल रहा है, और इसका रास्ता क्या है इससे मुक्ति का? ईश्वर की प्रीति के बगैर, ईश्वर के निश्चय के बगैर, ईश्वर के मार्ग पर चलने के बगैर मनुष्य इन मुसीबतों से, इस अग्नि से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। ये वाणी का फाइनल निर्णय है। अब इस निर्णय पर कितने लोगों का विश्वास होगा, विचार करके देख लो। विश्वास नहीं है, इसीलिए हम लोग सत्संग 100 बार सुनने के बाद भी, ग्रंथ 100 बार पढ़ने के बाद भी अपनी बुद्धि के निश्चय में ये बात नहीं ला पाते कि संसार का जो मार्ग है ये दुखों का मार्ग है, बेचैनी का मार्ग है, असंतोष का मार्ग है। ये निर्णय हमारी बुद्धि का हो ही नहीं पाता, इसीलिए बार बार लौट फेर के सिमरन को छोड़ देते हैं, संसार को पकड़ लेते हैं। कहते हैं पैसे का घाटा नहीं होना चाहिए, सिमरन छूट जाए कोई बात नहीं। यदि दो चीजें सामने आ जाएं, सिमरन का समय और पैसा कमाने का समय, यदि पता लग गया घाटा हो जाएगा तो फौरन वो सिमरन छोड़ देगा, कहेगा वो तो फिर भी हो जाएगा लेकिन ये घाटा जो है ये पूरा कर लूं पहले। तो मेरी प्रायोरिटी में संसार पहले, तो यही मेरे निश्चय को बताता है, मेरी बुद्धि का निश्चय कहां खड़ा हुआ है। मेरे लिए संसार सत्य है और ईश्वर, प्रैक्टिकल फैक्ट यह है कि ईश्वर मेरे लिए असत्य है, उसके बारे में मेरा निश्चय पक्का नहीं है। और ये निश्चय पक्का क्यों नहीं है? क्योंकि अपने बारे में ही मेरा निश्चय ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये निश्चय नहीं है मेरा। जबकि गुरु हर जगह ये लिख रहा है, सारे शास्त्र हर जगह ये बात कर रहे हैं। महाराज जी की वाणी स्पष्ट कह रही है, ये संसार सराय, ये संसार सराय है, टेम्परेरी रहने की जगह है, कुछ दिन के लिए रहने को मिली है। जीव मुसाफिर नीत, और मेरे लिए ये वाणी क्या संबोधन कर रही है? जीव, मैं मुसाफिर हूं, नित्य का मुसाफिर हूं। जीव मुसाफिर नीत, मैं परमानेंट मुसाफिर हूं इस दुनिया का। मुसाफिर क्यों हूं? संसार रूपी धर्मशाला या देह रूपी धर्मशाला मुझको कुछ दिन रहने के लिए मिली है, मैं यात्री हूं, परमानेंट यात्री हूं। तो इस धर्मशाला का उपयोग, इस देह का उपयोग मैं किस वास्ते करना चाहता हूं? कि मुसाफिर, याद रखिए, कभी भी कहीं भी संतुष्ट नहीं होता, मुसाफिर कहते ही उसको है। जो निरंतर यात्रा में है वो संतुष्ट कैसे हो सकता है? वो संतुष्ट हमेशा अपनी मंजिल पर पहुंचकर होता है, उसके मस्तिष्क में हर समय मंजिल बनी रहती है कि मैं मुसाफिर हूं, मैंने मंजिल पर पहुंचना है। तो इसीलिए ये देह जो है हमको मिली है, इसको मंदिर भी कहते हैं। वाणी कह रही है, क्यों नर मोह मंदिर में सोया, जन्म अमोलक भ्रम में खोया। साहब वाणी कह रही नहीं कह रही, ए नर, नर का मतलब जीव से, ए जीव, तो इस देह रूपी मंदिर में मोह के कारण क्यों सो रहा है? सोने का मतलब ये मोह से है यहां पर, कि मैं देह हूं, ये तेरी निद्रा अवस्था है, गहरे मोह की अवस्था है, तू इसमें सो रहा है। सोने का मतलब तू अपनी मंजिल पर चलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, मंजिल पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। यदि तू इस देह में सोता रहेगा, या यूं कह लें कि अपने देह को अपना स्वरूप समझकर संसार के सुख भोगने की तैयारी करता रहेगा, उसके लिए कर्म करता रहेगा, तो वाणी साफ कह रही है जन्म अमोलक भ्रम में खोया। तो पूरी आयु भ्रम के अंदर खो दी, तूने जिंदगी में एक भी कर्म नहीं किया जो तेरे लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला था। तो ये होश ही नहीं आया कि मेरे लिए लाभदायक क्या है और नुकसानदायक क्या है। तो इसीलिए मनुष्य पूरी जिंदगी अपने आप को देह समझकर जीता रहता है, और देह समझने का परिणाम क्या निकलता है कि ये पांच विकार का शिकार हो जाता है, क्योंकि देह के अंदर है ही पांच विकार। तो जितनी इच्छाएं इसके अंदर उठती हैं मन के अंदर सुख भोग की, वो सारी की सारी पांच विकार से जनित इच्छाएं हैं इसकी। कभी सेक्सुअल डिजायर परेशान करेगी, इसको काम कहते हैं, उसके लिए कितने पुरुषार्थ करता है। कभी लोभ इसको परेशान करेगा, तो वस्तु इकट्ठी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है। कभी क्रोध इसको परेशान करेगा, तो कैसा अंदर से जलता है और दूसरों पर क्रोधित होकर दूसरों को कितना जलाता है, कितना सर्वनाश करता है क्रोध में आकर, पूरे देश के देश चौपट हो जाते हैं। एक राजा को यदि क्रोध आ जाए तो पड़ोसी को फूंक के रख देगा, यदि सामर्थ्य सुंदर है तो पूरे देश को फूंक देगा। उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां का जो प्रेसिडेंट किम है, क्या हाल कर रहा है लोगों का। जहां उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, सीधा तोप चढ़ा देता है लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स को। अब पूरा देश देख लीजिए ना, एक व्यक्ति की उंगली पर नाच रहा है पूरा देश, और सारी जनता परेशान है वहां पर। तो ये क्रोध जो है, इसकी अग्नि ये क्या नहीं कर सकती ये सारे संसार में। हिटलर को क्रोध आया था, क्या हल कर दिया उसने, जर्मनी का बर्बादी कर दी। तो इस प्रकार से ये पांच विकार जो है, हमको अहंकार जब बढ़ता है तब देखो क्या करते हैं, अपनी दादागिरी चलनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए, इतना सा अपमान भी बर्दाश्त नहीं होता। कोई कर दे ऐसे अहंकारी आदमी का अपमान, देखो क्या करेगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी हमारी इच्छाएं इन पांच विकारों से प्रेरित होती हैं। तो मैं जो विकास करता हूं संसार में आकर, तो जिसको हम बाहरी रूप चमक दमक कहते हैं, मेरी चमक दमक ही तो बढ़ती है विकास करके, भोगों की वस्तुएं ही तो बढ़ती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये जो उन्नति है, चाहे वो एक व्यक्ति की हो, चाहे वो एक परिवार की हो, चाहे वो एक देश की हो, ये पांच विकारों की उन्नति है। इसलिए इस विश्व में जो भी देश महान उन्नति करेगा, वो पूरी तरह से एक दिन उसका सर्वनाश हो जाएगा इसी उन्नति के कारण। ये संसार का ट्रुथ है, और इसी को महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी जैसे जैसे मनुष्य के अंदर ये भोग वासना बढ़ती है, मादा परस्ती बढ़ती है, मेटेरियलिज्म बढ़ता है, वैसे ही वैसे मनुष्य पहले से ज्यादा स्वार्थी होता चला जाता है। तो जिसके अंदर ये पांच विकार ज्यादा जोर मारते हैं, वो ज्यादा स्वार्थी, और ये स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि अपने ही परिवार का वो इस्तेमाल करने लगता है अपने लिए। कहता मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, ये सब मेरी सेवा के लिए बने हैं, और जो इसकी सेवा में दखल देता है वो इसका दुश्मन बन जाता है। ये स्वार्थ इस कदर बढ़ जाता है। तब महाराज जी कहते हैं, प्रेमी ये स्वार्थ बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपस में ही लोग कट कट करके लड़ लड़ के मरने लगते। और जो उन्नति इन्होंने बड़ी मेहनत से वर्षों में की थी वो कुछ ही दिनों में उसका सर्वनाश कर देते। तो सारे विश्वयुद्ध होते यही तो होता है, और क्या होता है? विश्वयुद्ध में क्या दृश्य दिखाई पड़ता है? ये तो दिखाई पड़ता है, इंग्लैंड ने, जिसने पूरे विश्व पर राज किया था, कहते हैं इंग्लैंड का सूर्य अस्त कभी होता ही नहीं था, अर्थात पूरे ग्लोब में इसके देश थे मौजूद जिस पर राज करता था। तो द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी ने क्या हल कर दिया इंग्लैंड का, कि सब देशों को छोड़कर भारत पर भी राज करता था उस समय, तबाह हो गया पूरा इंग्लैंड, सब अंग्रेजों को वापस अपने देश में, अपना देश बचाने के लिए जाना पड़ा। तो ये सर्वनाश कहां से हुआ? वही स्वार्थ भावना से, हिटलर की स्वार्थ भावना ने ये सारा दुनिया का दर्शन बदल दिया। इंग्लैंड की स्वार्थ भावना ने भी दुश्मन तैयार किए नहीं किए? भाई दुश्मन तैयार कैसे होता है? जब आपका स्वार्थ बढ़ेगा आप सफल हो गए, दुश्मन जलेगा आपसे, और ऐसे ही नहीं होता। आपका जैसे स्वार्थ बढ़ेगा आपकी जरूरतें बढ़ेंगी, तो आप दूसरे पर नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहोगे, उसके सुखों पर डाका डालना चाहोगे तरह तरह के बहाने बनाकर। जैसे चाइना बहाने बनाता है कि हिंदुस्तान का बॉर्डर मेरा है, लड़के उसने आधा लद्दाख कब्जे में ले लिया, कह रहे ये तो पहले से ही हमारा था। तो यही स्थिति होती है। तो जब उसका पड़ोसी कभी स्ट्रांग हो गया, उससे कहता है अब निकालूंगा तेरा तेरा दम मैं अब निकालूंगा, वो अपनी जमीन तो वापस लेता ही है, उतनी उसकी भी लेके दबा लेता है फिर वो। तो ये हमेशा संसार में चलता रहता है, हमेशा। तो अब बताइए, ये संसार सुखदाई है या दुखदाई है? ये कहानी चाहे विश्व की देख लो, चाहे किसी एक देश की देख लो, चाहे किसी एक शहर की देख लो, चाहे किसी एक परिवार की देख लो, चाहे किसी एक मनुष्य की देख लो, कहानी यही है। तो इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य बनाया ही इसलिए गया है कि वो अंतर्यामी ईश्वर की तलाश करे। और अंतर्यामी ईश्वर का स्वरूप क्या बताते हैं वो? एक समझने में बड़ा आसान तरीका महाराज जी ने कहा, प्रेमी तुझको ये तो पता है तेरे जिस्म में जान है, बिना जान के तो तेरा जिस्म नहीं चल रहा, इस जान पे तेरा कोई कमांड चलता है क्या? नहीं चलता। अगली श्वास मुझे आएगी या नहीं आएगी ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, मेरे हाथ में नहीं है, दुनिया के किसी डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। वो भी कहता है मैं प्रयास कर रहा हूं, बाकी जिंदगी ईश्वर के हाथ में, गारंटी कोई नहीं। तो कहते हैं प्रेमी तेरे जिस्म में जो जान है इसका नाम ईश्वर है, इसके बिना ना तेरा अस्तित्व कोई है ना जगत का अस्तित्व कोई है। तो सारी जगत की सत्ता जिसके आधार पर खड़ी हुई है उसको तो भूले बैठे हुआ है, जो सारे जगत को तेरी देह को कंट्रोल कर रही है उसका तेरे जीवन में महत्व कोई नहीं बचा, तेरे जीवन में कोई रोल ही नहीं बचा उसका। तो इसीलिए इसका निर्णय केवल ऋषि करता है, केवल सदगुरु करता है जो ब्रह्म रूप है, वो सारे हमारे मन के भ्रम का निवारण कर देता है, वही निर्णय करता है कि मैं तेरे अंदर निवास करता हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश, शरीर रूप में प्रेजेंट होते हुए भी अर्जुन से कह क्या रहे हैं वो, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं जो मुझे देख रहा है तू, इस देह के द्वारा तो मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं लेकिन मैं देह नहीं हूं, इस कंफ्यूजन में मत रहना। कैसी आत्मा हूं? सर्वभूताशय स्थिता, सारे प्राणियों के अंदर स्थित हूं, केवल मेरे ही देह का जीवन नहीं चल रहा उसके कारण, सारी जितनी भी देह तुझे नजर आ रही हैं, चाहे वो चींटी की देह क्यों ना हो, वो उसके कारण ही देह चलती फिरती नजर आ रही है। तो सबका वो जीवन रूप है, और केवल जीवन रूप नहीं है, वो आनंद रूप भी है। क्यों आनंद रूप है? ना उसमें ये पांच विकार हैं, ना उसमें ये तीन गुण हैं। तो सारी सृष्टि की जो बेचैनी है वो तो तीन गुण और पांच विकार के कारण है ना, और वो इन विकारों से, इन गुणों से मुक्त है। तो इसका मतलब वो परिवर्तन से भी मुक्त है और वो विकारों की जलन से भी मुक्त है। तो ऐसा जो मुक्त ईश्वर है और वो मेरा जीवन है, देह यदि मेरा स्वरूप भी है मान लिया, लेकिन इसकी खड़ा तो उसके आधार पर है। तो जिसके आधार पर ये देह खड़ी हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विचार करके तो देखो। तो जिसमें जीवन होता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। जीव में भी जीवन है, और जीवन किसे कहते हैं? चेतना को जीवन कहते हैं, होश को जीवन कहते हैं, कॉन्शियसनेस को जीवन कहते हैं। तो मेरे अंदर होश है, मैं जानता हूं, आंख बंद भी कर लूं, सारी इंद्रियों का व्यापार मैं बंद कर लूं 2 मिनट के लिए, तब मैं अपने मन की गति को जानता हूं कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तो जो ये जानने वाली शक्ति है वो मैं हूं, मुझे पता है कि मैं अपने मन के बारे में जानता हूं। तो जिस प्रकार इस देह के अंदर मैं खुद स्थित हूं और मैं अपने मन की गति को जानता हूं, ये किसी इंद्रिय का व्यापार नहीं है, क्योंकि देह में इंद्रियां स्थित हैं, सारे कर्म उसके द्वारा होते हैं, सारा अनुभव उसके द्वारा होता है, लेकिन मैं मन की गति को जानता हूं जो देह नहीं है, जिसको मैं अपना स्वरूप समझे बैठा हूं। तो इसीलिए मुझको ईश्वर का अंश कहा जाता है, क्योंकि मेरे बारे में ईश्वर जानता है, अर्जुन के हर चीज के बारे में कृष्ण जानते हैं, और कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, पूर्व जन्म में क्या था वो भी जानता हूं, वर्तमान में क्या है वो भी जानता हूं, भविष्य में क्या होगा वो भी जानता हूं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जानने वाला है वो जो ईश्वर है, वो जो चेतन सत्ता है। तो उसके मुकाबले में मैं केवल अपने बारे में जानता हूं थोड़ी सी बात। तो मैं खुद चेतन हूं, इसीलिए मुझको ईश्वर का अंश कहा जाता है। तो मैंने अपने असली पिता से या अपनी असली माता से मिलना है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको चेतन सत्ता कहते हैं, या जिसको केवल सत कहते हैं, या जिसको केवल तत्व कहते हैं, कई शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को ईश्वर भी कह देते हैं, उसी को ब्रह्म भी कह देते हैं। तो ये जो जीव है यानी मैं हूं, तो मेरा जो मूल स्रोत है, मेरा जो निज घर है, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ईश्वर। तो ये मनुष्य देह मुझको इस वास्ते मिली थी कि इस देह का मंदिर की तरह मैं इस्तेमाल करूं, अर्थात ईश्वर की पूजा के लिए इसका इस्तेमाल करूं, मैं इसको भोगों में लगाकर जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। जितने दिन मैं पैसा कमाने में, भोग विलास करने में खर्च कर रहा हूं, ये सारी जिंदगी की बर्बादी है, और इसकी आगे चलकर बड़ी सजा खड़ी हुई है। क्योंकि जिस काम के लिए आपको ईश्वर ने ये देह दी थी, उसका यदि तूने इस्तेमाल नहीं किया उस पर्पज के लिए, तो तू सजा का पात्र है। इसीलिए मनुष्य देह तुझसे छीन ली जाती है, पशु देह तुझको प्रोवाइड करवा दी जाती है, यदि तूने इस काम को इस जन्म में, मनुष्य जन्म में नहीं किया तो। इसीलिए मनुष्य का यह पतन है। तो इस अलर्टनेस के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस बुद्धि के साथ, यदि मैंने गुरु की बात के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया तो ये जिंदगी की खुली बर्बादी है, ये गहरी अज्ञानता है, इसकी संसार में कोई माफी नहीं है। राजा तो आपको चोरी करते हुए देख लेगा तो सजा देगा, लेकिन ईश्वर तो हर एक्टिविटी को देख रहा है। तू अपने परिवार का पालन कर रहा है, अपने देश का पालन कर रहा है, अपनी देह का पालन कर रहा है, तो इसको ये पता नहीं कि इसकी भी सजा है। ये तो तेरा अहंकार है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, इसका पालन तो ईश्वर कर रहा है। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। पहुंचना तो तूने यहां था कि तू अकर्ता हो जाता। जब तुझे अंदर ईश्वर का बोध होगा ना, तब पता लगेगा कि सारी जगत की रक्षा, सारी जगत का पालन, सारे जगत का भाग्य विधाता तो ईश्वर है, वो मनुष्य तो है ही नहीं। ये तो इसका कन्फ्यूजन था। लेकिन आज की परिस्थिति में मुझसे ये बात नहीं कही जाती, मुझसे यही कहा जाता है कि जो तू कर्म कर संसार में, वो शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार करने की कोशिश कर, और जो भी कर्म तुझसे बन पड़े उसका जो कुछ भी फल है उसको ईश्वर के हुक्म में देखने की कोशिश कर कि जो फल ईश्वर ने निश्चित कर रखा था वो दे दिया। तो इसलिए तूने उस फल की आसक्ति से निवृत्ति प्राप्त करनी है। क्यों? क्योंकि तूने इस मन को ईश्वर के सिमरन में लगाना है। यदि मन आसक्ति में रम गया, कर्म के फल से चिपका रहा, तो ये बेचैन हो जाएगा। तो कर्म फल की ओर देखने की मनाही कही गई है मनुष्य के लिए, उसको प्रभु आज्ञा में समर्पण करने की बात कही गई है। ये वही कर सकता है जिसको अपने बारे में पूरा होश है कि ये मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, अंतर्यामी ईश्वर तक पहुंचने के लिए मिला है। वही इस कर्म फल की आसक्ति से निवृत्ति की कोशिश करेगा, क्योंकि कर्म फल तो बाहर है ना। कभी मन के अनुकूल हो गया तो बार बार उस चीज को भोगने की कोशिश करेगा, बार बार उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। मन के प्रतिकूल हो गया तो उससे छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तेरी बेचैनी बढ़ जाएगी। जितना कर्म करेगा फल प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, वो सारी सारी तेरी मन की बेचैनी को बढ़ाएगा, चाहे उसमें सफलता मिले चाहे उसमें विफलता मिले। हम दुख को तो जानते ही बुरी चीज है, लेकिन हमको यह पता नहीं कि सुख भी दुख के बराबर ही बुरी चीज है, ये हमको नहीं पता इस बात। जो सुख उस स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। सुख को घना कलेश कहा गया क्योंकि सुख में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सारी प्रकृति जब परिवर्तनशील है तो सुख में परिवर्तन क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए मनुष्य के जीने का एकमात्र रास्ता है कि इस विज्ञान को, इस संसार दुख रूप है, जीवन दुख रूप है, केवल ईश्वर आनंद रूप है, इस विज्ञान को जब तक मैं गहराई से समझकर मनन नहीं करूंगा तब तक मेरी बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब तक बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं बहाने बनाता रहूंगा और लगा रहूंगा संसार में, मेरी चाल सीधी होने वाली नहीं। इसीलिए जीने का एकमात्र रास्ता है मनुष्य के लिए जो प्रभु ने बनाया है, एक ही रास्ता है कि अंदर की यात्रा की ओर बढ़ो, बाहर की यात्रा छोटी करो, ताकि जीवन बर्बाद न हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। Thank you.